ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की दो दिन की यात्रा पर आज बैंकॉक पहुंचे। बैंकॉक पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। बैंकॉक पहुंचने पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आधिकारिक वार्ताओं में भाग लेने तथा भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग मजबूत करने को इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंगतान शिनावात के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे परस्पर संबंधों के सभी आयामों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, साथ ही द्विपक्षीय भागीदारी को और गति देने तथा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक रूप से मधुर द्विपक्षीय संबंध, साझा सभ्यता, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध भी रहे हैं। थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी है और एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार भी है। इसके अलावा थाईलैंड बिम्स्टेक में भी एक अति महत्वपूर्ण भागीदार है। थाईलैंड आसियान में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आसियान क्षेत्र में सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सुपर्णा के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी कल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायक के निमंत्रण पर तीन दिन के राजकीय दौरे पर श्रीलंका जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में अनिश्चितता और अस्थिरता को देखते हुए संगठन के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाएं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 20वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि नई व्यवस्था मूल रूप से अधिक क्षेत्रीय और एजेंडा विशिष्ट है। उन्होंने सदस्य देशों से साइबर सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक उपाय, मानव तस्करी, अवैध मादक पदार्थों के व्यापार और अन्य संबंधित गतिविधियों की गंभीरता पर ध्यान देने तथा इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जरूरी रूपरेखा तैयार करने को भी कहा। राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इस विधेयक को राज्यसभा के कामकाज की अनुपूरक सूची में सूचीबद्ध किया गया है। आज सुबह राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने घोषणा की कि सदन में आज विधेयक पर विचार किया जाएगा। ये विधेयक कल रात करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा में पारित हो गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। इस कानून का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा कर शासन में सुधार करना है। लोकसभा में कल चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई संबंध नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों से संबंधित है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने विपक्षी नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए श्री पासवान ने कहा कि ये विधेयक गरीब मुसलमानों और महिलाओं के हित में है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाया जाएगा। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने आज विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लगाए गए भूमि हड़पने के आरोप का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। आज सुबह जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री ठाकुर से कल लोकसभा में की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग की। अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ की घोषणा के बाद प्रमुख एशियाई और घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स अब से कुछ देर पहले 287 अंक लुढ़ककर 76,329 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।